بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم بأن الله يرى وقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام ہمارے علماء کرام مدرسین نظام, اللہ تعالی موت تک قرآن کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے, اس کی اللہ کی بارگاہ میں اہتمام سے دعائیں کیا کرو. ایک اول بات یہ آپ سے عرض کرنی ہے, وقت ہمارا جو طے ہوتا ہے کہ بھائی روزانہ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے ایک استاد مکتب کے اندر لگائیں, اس کے لیے نظام بنا ہوا ہوتا ہے. مثال کے طور پر 7 بجے سے 10:30 بجے تک, کہیں 7 بجے سے 10 بجے تک, تو یہ وقت ہم پورے پورا مدرسے کے اندر بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے لگائے. بچوں کا وقت ہمارا وقت بہت قیمتی ہے, اور بچوں کا وقت ہمارے لیے امانت بھی ہے. یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی تھی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی متولی ٹرسٹی نگران ہمیں دیکھتا نہیں ہے, ہم دیر سے گئے جلدی نکل آئے. لیکن یہ آیت ہمیشہ یاد رکھو, الم یعلم بأن اللہ یرا, کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ ہر وقت پر دیکھ رہے ہیں. اگر یہ آیت ذہن میں رہے گی تو انشاءاللہ ہم وقت میں غفلت نہیں کریں گے. ہم اللہ کے لیے پڑھاتے ہیں, جنت کے لیے پڑھاتے ہیں, آخرت کے لیے پڑھاتے ہیں, تو پھر ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تعلیم کے لیے, دین کی تعلیم کے لیے لگے, اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. بلکہ آپ تو یوں نیت کر لیجئے کہ وقت سے پہلے درسگاہ میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے, اور وقت ختم ہونے کے بعد ہی نکلیں گے. یہ ہماری نیت ارادہ اور عزائم ہو. قرآن کی آیت ویل, بڑی بربادی, بڑی تباہی, جہنم کا ایک خطرناک کنواں, کن لوگوں کے لیے؟ تطفیف کرنے والوں کے لیے. یہ تطفیف کرنے والے کون ہیں؟ لوگوں سے لینا ہو تو پورا لیتے ہیں, اور دینا ہو تو گھٹا کر کے دیتے ہیں. یہ آیت آپ معرف القرآن میں دیکھ لیجئے, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کی ہے, जिस तरह ये आयत नाप तोल वजन मीटर फांटा इनके लिए है, इसी तरह हर मुलाजिम के लिए भी आयत है। मदरसे में, मकतब में, किसी भी इदारे में हम जो काम करते हैं तो उसके औकात को पूरे पूरा अदा करना इस आयत की रोशनी में हमारे लिए जरूरी है। यानी हम यूं मफहूम निकाल सकते हैं कि जब तनख्वाह लेने का वक्त होता है तो हम पूरी चाहते हैं, बल्कि जायद की चाहत रखते हैं, और वक्त देना होता है तो वक्त घटा करके देते हैं, कम देते हैं। ऐसों के लिए कुरान में फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बड़ी बर्बादी है, बड़ी तबाही है, जहन्नम का खतरनाक कुआं है। इसलिए अल्लाह के साथ हमारा मामला है पूरी अमानतदारी के साथ, वक्त ज्यादा से ज्यादा लगाओ और बच्चों का वक्त फायदा मंद बनाओ कि बच्चों को इस वक्त में खूब फायदा पहुंचे, उनका कुरान, मुतफर्रिकात, तालीम दीन, दीन की तालीम, महफूजात, याद करने की चीजें, सब चीजों में उनको फायदा है। तो वक्त पूरा देना है और वक्त को फायदा मंद भी बनाना है। करोगे ये काम? अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, अल्लाह हमें देखते हैं और हम अल्लाह के लिए ये काम करते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको अपनी जगह पर आकर, और आज सुबह यहाँ हमारे इन उलमाए किराम ने बहुत सारी बातें बतलाई, हिदायात दी, उम्मीद है कि आप हजरात उस पर अमल शुरू कर देंगे। इन्होंने बहुत खुल करके आपको सारी बातें बतलाई है, आपके सवालात के जवाब दिए हैं, आपकी उलझनों में रहनुमाई की है। तो आप हजरात अब इस नहज से काम को पूरे तौर पर आगे बढ़ाएं, ऐसी हम आपसे पूरी उम्मीद करते हैं। एक बात बाकी रह जाती है बड़ी बच्चियों की तालीम के सिलसिले में। बड़ी बच्चे का मतलब अभी आपके यहाँ जो उर्फ है उसके मुताबिक ये है कि 11 साल की बच्ची। तो पहली कोशिश तो ये करो कि 11 साल की उम्र तक में बच्चियों की बुनियादी तालीम मुकम्मल हो जाए, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 4 साल की उम्र में दाखिला लिया, 5 साल की उम्र में दाखिला लिया, तो 6 या 7 साल में उनका काम मुकम्मल कराना बिल्कुल आसान है। और काम मुकम्मल कराने का मतलब ये है कि वो कुरान मजीद सही पढ़ती हो जाए, महफूजात का निसाब मुकम्मल हो जाए, तालीमुद्दीन का 1 से लेकर 6 हिस्से इनके मुकम्मल हो जाए, और शुरू के अंदर जो पढ़ाना है बच्चों का तोहफा या रोज़तुल अतफाल बच्चों का तोहफा या नूरानी कायदा जो भी करती है, लेकिन कुरान सही पढ़ती हो जाए बच्चियां और महफूजात का निसाब हो जाए और 1 से 6 हिस्से तालीमुद्दीन के मुकम्मल हो जाए, ये कोई मुश्किल नहीं है 11 की उम्र तक में पूरा करना। तो आप इस तरह निजाम लेकर के चलें। दूसरी बात यह है कि 11 के बाद बच्चियों की उम्र अब आगे बढ़ेगी, तो उस जमाने में उनकी तालीम और तरबियत के लिए आप अपनी अहलिया मोहतरमा को तैयार कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया। कैसे बचाएंगे? घर वालों को दीन की तालीम देंगे और दीन की तालीम पर अमल कराएंगे तो वो खुद भी जहन्नम से बचेंगे और हमारी जिम्मेदारी अदा हो जाएगी। बेचारी बीवी आई हमारे पास, हम अपनी जरूरत पूरी करते हैं, वो हमारी खिदमत करती है, तो हम उसकी आखिरत की फिक्र करें। बीवी को सही नाज़िरा कुरान पढ़ाओ, तालीमुद्दीन पढ़ाओ, मसाइल पढ़ाओ, सीरत पढ़ाओ, ये निसाब बीवी को भी पढ़ाओ, ये भी घर की तालीम का एक हिस्सा है, जिसको घर की तालीम कहते हैं उसका एक हिस्सा है। अब आपकी बीवी तैयार हो जाएगी तो आपके बच्चों की तालीम आसान हो जाएगी, और आपकी बीवी के जरिए बड़ी बच्चियों की तालीम का निज़ाम भी आसान हो जाएगा। दूसरी शक्ल ये है कि जो बच्चियां आपके पास पढ़ने के लिए आती हैं उनमें जो बच्ची होशियार, ज़हीन, अच्छी पढ़ी आपके जहन में है, तो आप उन बच्चियों के जब 11 साल हो जावे तो उसके बाद उन्हीं बच्चियों के जरिए दूसरी बड़ी बच्चियों की तालीम का काम लीजिए कि बेटा तेरा काम कुरान का बहुत अच्छा हो गया, तूने तालीमुद्दीन अच्छी तरह पढ़ ली, महफूजात पढ़ ली, अब अपने गांव में अपने महल्ले में बहुत सारी बड़ी औरतें हैं, जवान लड़कियां हैं जिनका कुरान ठीक नहीं या पढ़ा ही नहीं है या उनको दीनी मसाइल की वाकिफियत नहीं है, तो बेटा चलो तुम उनको पढ़ाओ, बड़ी उम्र की औरतों को, बड़ी जवान लड़कियों को। तो अपनी शागिर्दाओं के जरिए से भी हम ये काम करवा सकते हैं। और हज़रत मौलाना इकबाल साहब दामत बरकातहुम की तरफ से ये खुशखबरी भी है, आप तो ये काम अल्लाह के लिए करेंगे, कि आपकी अहलिया मोहतरमा अगर इस तरह पढ़ाई के लिए तैयार हो गई और वो पढ़ाएगी तो इंशाल्लाह उसको भी अलग से तनख्वाह दी जाएगी, अलग से उसको भी तनख्वाह मिलेगी। तो जैसे हम फॉरेन में सुनते हैं कि मियां बीवी दोनों कमा रहे, तो अब यहाँ भी हो जाएगा कि मियां बीवी दोनों दुनिया भी कमा रहे हैं, आखिरत भी कमा रहे हैं, और दोनों माशाल्लाह जन्नत कमा रहे हैं, कितना अच्छा मौका हो जाएगा। और बीवी की तालीम तरबियत की जिम्मेदारी भी अदा हो जाएगी, हमारे घर में हमारे बच्चे भी हमारी बीवी से पढ़ेंगे। हज़रतुल उस्ताद शेखुल मशाइख मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नवरल्ला उमर कदव शेखुल हदीस दारुल देवबंद हजरत से मैंने खुद सुना कि जब शादी हुई तो पहले मैंने बीवी को हाफिज़ा बनाया, अब बीवी हाफिज़ा बन गई, उर्दू वगैरह पढ़ लिया, तो घर के अंदर जितने बच्चे हाफिज हुए, नाज़िरा पढ़े, वो अपनी माँ से पढ़े, इब्तिदाई किताबें भी माँ ने पढ़ाई, नाज़िरा भी माँ ने पढ़ाया, हिफ्ज़ भी माँ ने पढ़ाया, कितना अच्छा माहौल। फिर का बड़े बेटे की शादी हुई और बहू आई, तो बहू को भी कह दिया कि तुझे अभी चंद दिन घर का काम करना नहीं है, चलो हिफ शुरू करो, तो बहू को भी सास अम्मा ने हाफिज़ा बनाया, कितना अच्छा माहौल। तो ये ایک اچھا مبارک سلسلہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو پڑھاؤ گے تو اس کی برکت سے آپ کے بچے، آپ کی بہو، آپ کے گھرانے میں دین کی تعلیم زندہ ہوگی، اور محلے میں، گاؤں میں بڑی عمر کی عورتیں، بڑی عمر کی بچیوں میں دین کی تعلیم کا ماحول بنے گا۔ کرو گے اس کی فکر آپ لوگ؟ میں تو بعض مرتبہ تقریروں میں جلال میں جب ہوتا ہوں کبھی تقریر میں غصہ بھی آ جاتا ہے، اور حدیث سے ثابت بھی ہے، شمائل میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے درمیان آنکھ مبارک سرخ ہو جاتی تھی، آواز اونچی ہوتی تھی۔ تو میں کہتا ہوں مولویوں، بس تم نے تمہاری بیویوں سے بچے ہی نکالے۔ آج تک کتنے مولوی ایسے ہیں جنہوں نے بیوی کو کہا ہو کہ چلو التحیات سناؤ، درود سناؤ، قرآن سناؤ، ناظرہ سناؤ، کتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کبھی سنا ہم نے اپنی بیوی سے؟ اگر اس نے کھانا جلا دیا تو لڑیں گے، تیری ماں نے کھانا پکاتے سکھا کے نہیں بھیجا۔ سسرال جائیں گے تو شکایت کریں گے، لڑکی کو سکھا کے شادی نہیں کرائی۔ لیکن افسوس صد افسوس، کبھی ہم نے ان کا ناظرہ، التحیات، درود، نماز کا طریقہ، ان کی تسبیحات، کبھی ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ ہم بہت بڑے غافل شوہر ہیں کہ صرف بیویوں سے دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو ان کو دین دینا چاہیے وہ ہم نے نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک بیویوں کو، امہات المؤمنین کو، وہ پاکیزہ تعلیم دی کہ حضور کی گھریلو زندگی امت کے سامنے امہات المؤمنین کے ذریعے آئی۔ حدیث کی کتابوں میں کتنی باتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بڑے بڑے صحابہ تابعین حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے، پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اجلہ بڑے بڑے جلیل القدر تابعین اور صحابہ نے ماں عائشہ کی سند سے احادیث نقل کی، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ تو یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم اپنی بیوی کو، گھر والی کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کرو گے یہ کام جا کر کے؟ اس کی طرف خوب توجہ دو۔ اور اب اس کچھ وقت سے ہم نے معلمات اور آپاؤں کی تدریب کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سال کاپودرا میں بھی ہوا، بارڈولی میں بھی ہوا، قیام کام کے ساتھ، اور ان کے اندر ہماری یہاں صبح سے شام تک کا سلسلہ رہا۔ تو اگر آپ اس طرح چاہیں کہ بھائی اہلیہ کو لے کر وہاں آنا چاہیں کچھ دنوں کے لیے، تو قیام کا بھی نظام ہو جائے گا، کام کا بھی نظام ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پردے کے ساتھ ان کی تدریب کا نظام بھی بن جائے گا۔ اور اگر ایسی چند عورتیں تیار ہو گئی تو ہم تدریب کے لیے ساتھی یہاں بھی انشاءاللہ بھیج سکیں گے کہ ساتھی یہاں آ جاوے اور یہاں ان کی تدریب ہو جاوے، معلمات کی، آپ کی، خواتین کی، اس کا نظام بھی بن سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات سناؤں۔ اس سال ہم نے معلمات کی تدریب کی، تو تدریب کیسے کی؟ سب سے پہلا سوال آیا معلمات کی طرف سے کہ ہمارے گھر میں پکائے گا کون؟ آپ تین چار دن تدریب کے لیے فرما رہے ہیں تو پکائے گا کون؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا حل ہے آپ کی اور آپ کے پورے گھرانے کی، جتنے دن تدریب چلے گی کتنے دن کی دعوت، پورے گھر کی دعوت۔ اور وقت بتلا دیا کہ آپ اپنے شوہروں کو کہہ دو کہ 12 بجے آ کے نیچے ہماری یہاں کھانا کھا لیں، اور شام کو مغرب بعد آ کے اتنے بجے کھانا کھا لیں، سب کی دعوت۔ تو ماشاءاللہ اس کا حل نکلا۔ तो जितने दिन तदरीब चली तो वाकिफन आते रहे, शोहर भी भाई भी जिनके अब्बा भी जो भी घर में साथ रहते थे बच्चे कच्चे भी सबको खिलाया हमने, लेकिन कहा तदरीब करो आप लोग और सीखो आप लोग कैसे पढ़ाना है। तो बहरहाल एक मुबारक सिलसिला चला और उसकी बरकतें सामने हैं। आप चाहे तो वहाँ आए, आप चाहे तो यहाँ हम भेज देंगे, लेकिन अब औरतों के जरिए उम्मत की जवान बेटियों में तालीम का सिलसिला बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि 11 साल के बाद मौलवी के पास हम नहीं भेज सकते, फिर फितनों के खतरात लगे रहते हैं। इसलिए जो और जवान लड़कियों में इस वक्त दीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। आपने छठा हिस्सा तालीमुद्दीन का लिखा तो उसमें जवान लड़कियों के मसाइल हमने छेड़े हैं। आजकल कॉलेज हाई स्कूल में जो चीज़ें पेश आती है वो सब उसमें बयान की गई है। तो उम्मत की जवान बेटियों का ईमान बचाने के लिए, उम्मत की जवान बेटियों में दीन को बाकी रखने के लिए आपको अपनी अहलिया, अपनी बहन, अपनी वालिदा, अपनी मोहतमद शागिरदाओं के ज़रिए से काम को आगे चलाना है। पहले आप उनको बुनियादी तालीम दीजिए, फिर मजीद तदरीब के लिए आप चाहे तो वहाँ ले आइए, चाहे तो यहाँ निज़ाम बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस दरख्वास्त को कबूल करेंगे, कोशिश करोगे
इंशाअल्लाह।
अल्लाह ताला इस सिलसिले को यहाँ पर खूब जारी और नाफिस फरमाए और उम्मत की औरतों में बहन बेटियों में दीन की तालीम का एक सिलसिला आम हो जाए। एक किस्सा सुनाकर मैं बात मुकम्मल करता हूँ। मैंने अपने पीर मुर्शिद फकीहुल उम्मत हजरत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि आज़ादी से पहले हरियाणा पंजाब इलमी मराकिस थे तो वहाँ औरतों में भी हिफ्ज का और तजवीद और किराअत का बहुत बड़ा माहौल था। आजकल हमारे उस्ताद हजरत इमामुल फन कारी अहमदुल्ला साहब ने भी ये सिलसिला शुरू किया है, लड़कियों को सबा अशरा पढ़ाते हैं वो, और कारिया हो रही है माशाल्लाह, जिसको देखना हो आगे देखने के लिए वहाँ। तो कहा कि घर घर में हाफिजा और कुरान की कारिया होती थी। फिर एक किस्सा हजरत ने सुनाया कि एक माँ आटा गूंद रही थी और आटा गूंदते गूंदते अपने बच्चे का दौर सुन रही है। अब कितनी बरकत होगी अंदाज़ा लगाओ, ऐसा आटा जिसकी रोटी जिनके पेट में जावे उनके पेट में कितना नूर पहुँचेगा कि माँ आटा गूंदते गूंदते बच्चे का दौर सुन रही है। खैर तो सूरह यूसुफ दौड़ में आई तो बच्चे ने पढ़ा ला तअमन्ना अला यूसुफ, तो ला तअमन्ना पढ़ा तो फौरन माँ ने बच्चे को रोका, क्या गलती अब यहाँ क्या गलती हुई? मैं आपकी तौहीन तो नहीं करना चाहता लेकिन अक्सर कुरान पढ़ाने वाले को ही मालूम नहीं हमने क्या गलती की। ला तअमन्ना अला यूसुफ ने, माँ ने हाथ में आटा था तो यूं करके हाथ झाड़ पहले आटे से, फिर बच्चे के हाथ में से कुरान लिया एक तरफ रखा, बच्चे को एक चपत मारी थप्पड़ मारी और मार करके कहा बेटा तुझे ये मालूम नहीं कि इमाम हफ्स की जो किरात हम पढ़ते हैं उनके नज़दीक या इश्माम और रौम होता है, इसीलिए होंठ को गोल करके पढ़ो ला तअमन्ना अला यूसुफ, ये पढ़ो हफ्शियाँ इश्माम मार रोम करके। देखिए कैसी औरतें थी। उस पर ये वाकया सुना करके हमारे हजरत ने सुनाया कि इस वाकये से मालूम हुआ कि वो माएँ खाना भी बावजू पकाती थी, तो ही तो उसने आटा झाड़कर बच्चे के हाथ से कुरान लिया, बावजू खाना पकाती थी तो उनकी औलाद में नस्लों में हुफाज उलमा पैदा होते थे। दूसरी बात माँ हाफिजा थी तो ही तो बच्चे का दौड़ वो सुन रही थी। और तीसरी बात ये कि कारिया की तजवीज जानते थे तो इसको मालूम है कि इमाम हफ्स की खिरात में यहाँ पर इश्माम मारवाम होता है, जो आज हमारे बड़े बड़े मौलवियों को भी मालूम नहीं है। हालांकि हम लोग सब हफ्स की खिरात पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इश्माम मारवाम है किसी को मालूम ही नहीं आमतौर पर। इसलिए औरतों के अंदर भी ये चीज़ आवे ये बहुत ज़रूरी है। मैं दरख्वास्त करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को लेंगे और खूब अमल करेंगे। करोगे अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये मजलिस और ये हमारे हजरात उलमा जो आए, इनकी आमद को अल्लाह ताला पूरे इलाके के अंदर और इलाके के ज़रिए से पूरे खित्ते में पूरे आलम में कुरान मजीद की और दीन की सही तालीम के ताकयामत आम होने का जरिया बना देवे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।